दिन भर 6 मई सोमवार सभी सुनने वालों को संदीप सोनी का नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट की आंतरिक समिति ने चीफ जस्टिस रंजन गोगोई पे लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों को निराधार पाया। भारत में लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण में आज 7 राज्यों में 51 सीटों पर हुआ मतदान।
मैंने ये सोच डाला है कि ऐसी गवर्नमेंट आनी चाहिए जो किसी जाति को वो नहीं करे, सबके लिए इक्वल हो, जनरल एसटी ओबीसी सबके लिए इक्वल हो।
यही सोच के वो डाला है कि मोदी जी कुछ अच्छा काम करेगा।
वोट तो सही डल रहा है, ऐसी बात नहीं है, वैसे तो अब आ गया अल्लाह की मर्जी भाई।
बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में मतदान के दौरान तृणमूल कांग्रेस पर गड़बड़ी का आरोप लगाया।
दीदी के गुंडों की तमाम कोशिशों के बावजूद मतदाता वोट दे रहे हैं।
आज होंगी आपकी चिट्ठियां भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार भूमिका राय से। सोमवार को लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण के तहत 7 राज्यों के 51 सीटों पर मतदान हुआ। चुनाव आयोग के मुताबिक शाम 6 बजे मतदान का कुल 61.89% मतदान हुआ। पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक 74.15% और जम्मू कश्मीर में सबसे कम 17.07% मतदान दर्ज किया गया। पांचवें चरण में उत्तर प्रदेश की 14, राजस्थान की 12, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल की 7-7 और झारखंड की 4 सीटों पर मतदान हुआ। इस चरण में बिहार की 5 सीटों और जम्मू कश्मीर की अनंतनाग और लद्दाख की सीटों पर भी मतदान हुआ। सुप्रीम कोर्ट की आंतरिक समिति के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों को निराधार पाया है। आंतरिक समिति ने अपनी रिपोर्ट 5 मई को ही वरिष्ठता क्रम में नंबर 2 जज जस्टिस मिश्रा को पेश कर दी थी। इस रिपोर्ट की एक कॉपी जस्टिस रंजन गोगोई को भी सौंपी गई है। यह स्पष्ट नहीं है कि शिकायतकर्ता महिला को रिपोर्ट की प्रति दी गई है या नहीं। यह रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है। सीबीएसई के 10वीं के परिणाम घोषित हो गए हैं। संभवतः ऐसा पहली बार हुआ है जब 13 विद्यार्थियों ने एक साथ टॉप किया है। इन सभी 13 विद्यार्थियों को 500 में से 499 अंक प्राप्त हुए हैं। इन 13 विद्यार्थियों में 6 छात्राएं हैं। पहला स्थान हासिल करने वाले इन विद्यार्थियों में से एक उत्तर प्रदेश के नोएडा स्थित मयूर स्कूल में पढ़ने वाली शिवानी ने बीबीसी को बताया कि उनके लिए टाइम मैनेजमेंट सबसे महत्वपूर्ण रहा।
टाइम मैनेजमेंट का ये कि एवरी सेकेंड आई यूज इन अ प्रोडक्टिव मैनर और हमेशा कंसिस्टेंट और हार्डवर्किंग रही हूँ। और मेरे टीचर्स का सपोर्ट हमेशा रहा, मेरे पेरेंट्स का भी, उन्हें कभी प्रेशराइज नहीं करा, कभी भी कुछ छोड़ा नहीं, फोन भी था बट रेगुलरिटी स्टडीज के साथ रही है। घंटों की बात नहीं है बट ये कि आप जितना पढ़ो आप अच्छे तरीके से पढ़ो कि आपको हमेशा वो याद रहे।
गजा में मौजूद फलस्तीनियों और इसराइल के बीच 2 दिन तक चले भीषण संघर्ष के बाद युद्ध विराम होने के संकेत देखने को मिले हैं। अभी तक इसका आधिकारिक ऐलान तो नहीं किया गया है, मगर फलिस्तीनियों के रॉकेट हमले और इसराइल के हवाई हमले सुबह अचानक रुक गए। इसराइल सेना का कहना है कि उसने दक्षिणी इसराइल में नागरिकों पर सुरक्षा के लिहाज से लगाई गई पाबंदियां हटा दी हैं। इसराइली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि अभियान अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी तक हिंसा में कम से कम 25 फलिस्तीनी और 4 इसराइली नागरिकों की मौत हुई है। हमास के प्रवक्ता हाजिम कासिम ने कहा है कि संघर्ष विराम करवाने में मिस्र और संयुक्त राष्ट्र की भूमिका रही। प्रदर्शनकारियों और प्रतिरोध कर रहे लोगों पर कब्जाधारियों के आक्रामक रुख के कारण मामला बढ़ा था। इस आक्रमण का एकजुट होकर जोरदार तरीके से जवाब दिया गया। मिस्र, कतर और संयुक्त राष्ट्र के मध्यस्थों ने दखल देकर हालात को काबू में करने की कोशिश की है। हमास में सभी का एक ही रुख था, कब्जाधारियों को अपने वादे पूरे करने चाहिए। हम उनके व्यवहार पर नजर बनाए हुए हैं और किसी भी तरह की आक्रामक कार्रवाई का जवाब देने के लिए तैयार हैं। ये थे हमास के प्रवक्ता के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। श्रीलंका में नेगोम्बो शहर में मुसलमानों और बहुसंख्यक सिंहली समुदाय के लोगों के बीच संघर्ष के बाद प्रशासन को अतिरिक्त सैनिकों को भेजना पड़ा है। रविवार को सड़क पर हुई एक घटना के बाद लोग हिंसक उठे थे। कुछ वाहनों को आग लगा दी गई थी और कुछ घरों को नुकसान पहुंचाया गया था। पूरी रात कर्फ्यू लगा रहा, जिसे रविवार सुबह हटाया गया। हिंसा के सिलसिले में 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। बीबीसी समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा है। आप सुन रहे हैं शाम की सभा दिन भर रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी इस समय लाइव। मेरा नाम है संदीप सोनी। सुप्रीम कोर्ट की आंतरिक समिति ने चीफ जस्टिस रंजन गोगोई पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों को निराधार पाया है। सुप्रीम कोर्ट की एक पूर्व कर्मचारी ने पिछले महीने जस्टिस गोगोई पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। आरोपों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की आंतरिक समिति गठित की गई थी। समिति ने आरोपों को बेबुनियाद पाया है। इस खबर पर और जानकारी के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं बीबीसी संवाददाता दिव्या आर्य।
संदीप, अभी अभी जो शिकायतकर्ता है उन्होंने अपना बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि जो उनके दिल का सबसे बड़ा डर था वो आज सच हो गया है और उनकी जो न्याय की उम्मीद थी और हमारे देश के उच्चतम न्यायालय से जो एक उम्मीद थी कि उन्हें कुछ न्याय मिलेगा, उनकी बात सुनी जाएगी, आज वो टूट गई है। और वो कह रही हैं कि न्याय का जो एक ख्याल तक है उसमें इस वक्त उनको विश्वास नहीं हो पा रहा है। वो अपनी वकील के साथ बातचीत कर अगली क्या वो कार्रवाई कर सकती हैं इस पर फैसला करेंगी। लेकिन उन्होंने ये बताया है कि जो कमिटी की रिपोर्ट है वो उन तक नहीं पहुंची है और उन्हें मना कर दिया गया है कि रिपोर्ट की प्रति उन्हें नहीं दी जाएगी। आपको ध्यान होगा कि इस कमेटी की सुनवाई में शुरुआत में शिकायतकर्ता ने शिरकत की थी, लेकिन बाद में उन्होंने कहा था कि उन्हें एक वकील की ज़रूरत है क्योंकि मुख्य न्यायाधीश के बारे में बात करना, वो भी 3 जजों के सामने, उनके लिए बहुत वो नर्वस हो रही हैं, नहीं कर पा रही हैं और वो चाहती हैं कि उन्हें जो बयान दिए हैं उसकी रिकॉर्डिंग्स हो। क्योंकि ये सब बातों पर कमेटी राज़ी नहीं हुई थी, वो कमेटी से अलग हो गई थी और शायद इसी जैसे उन्हें इस रिपोर्ट की प्रति नहीं दी गई है। पर उनका कहना है कि अगर उन्हें प्रति नहीं दी जाएगी तो वो ये कैसे जानेंगी कि किस आधार पर उनकी बात को नकारा गया है। बहुत कड़ी प्रतिक्रियाएं आई हैं। इंदिरा जयसिंह जो वरिष्ठ सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील हैं, उन्होंने कहा है कि आम लोगों के हित में रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। साथ ही जाने माने लेखक और पत्रकार मनोज मित्ता ने भी कहा है कि आंतरिक समिति का ये कहना कि चीफ जस्टिस पर लगे यौन शोषण के आरोपों का कोई आधार नहीं है उच्चतम न्यायालय की विश्वसनीयता को कमजोर करता है। और न्यायमूर्ति चंद्रचूड़, एक रिपोर्ट आई थी एक अखबार में कि उन्होंने आशंकाएं जताई थी सुप्रीम कोर्ट से, कहा था, उस कमिटी से कहा था, हालांकि ये सिर्फ एक अखबार की रिपोर्ट थी, कि आशंका है कि ये क्योंकि शिकायतकर्ता अलग हो गई है कमिटी से तो कमिटी को उनके बिना अपनी जांच आगे नहीं बढ़ानी चाहिए। इन सब बातों का जिक्र किया जा रहा है। प्रशांत भूषण ने भी ट्विटर के जरिए अपनी आशंकाएं इस पर जाहिर की हैं। आगे देखते हैं कि शिकायतकर्ता अब क्या कदम उठाती है।
सुप्रीम कोर्ट की आंतरिक समिति ने चीफ जस्टिस रंजन गोगोई पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों को निराधार पाया है। इस खबर पर और जानकारी दे रही थी बीबीसी संवाददाता दिव्या आर्य। भारत में लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में आज 7 राज्यों में लोकसभा की 51 सीटों के लिए वोट डाले गए। इनमें उत्तर प्रदेश की 14, राजस्थान की 12, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल की 7, बिहार की 5, झारखंड की 4 और जम्मू कश्मीर की 2 सीटें शामिल हैं। कहते हैं कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। साल 2014 में लोकसभा चुनाव के नतीजे आप भूले नहीं होंगे, जब बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की 80 में से 71 सीटों पर जीत हासिल की थी। आज उसी उत्तर प्रदेश में 5वें चरण के मतदान के साथ कुल 53 सीटों पर मतदान संपन्न हो गया है। सुनिए उत्तर प्रदेश में आज हुए लोकसभा चुनाव का लेखा जोखा लखनऊ से हमारे सहयोगी समीरात्मज मिश्र की जुबानी।
उत्तर प्रदेश में 5वें चरण के मतदान में आज जिन 14 सीटों पर वोट डाले गए उनमें लखनऊ, अमेठी, रायबरेली, फैजाबाद जैसी राजनीतिक रूप से चर्चित सीटें भी आती हैं। मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे मतदान शुरू होने से पहले ही मतदाताओं की कतारें लगनी शुरू हो गई थी। हालांकि दोपहर में लाइनें छोटी जरूर हुईं लेकिन मतदाताओं का उत्साह कम नहीं हुआ। मतदान फिलहाल शांतिपूर्वक हुए बताए जा रहे हैं लेकिन कई जगह ईवीएम खराब होने, मतदान प्रभावित करने और मतदान अधिकारियों के किसी पार्टी विशेष के पक्ष में मतदान का दबाव बनाने जैसी शिकायतें भी आई हैं। अमेठी में बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर तीखे आरोप लगाए।
बूथ कैप्चर करने राहुल गांधी पधारे हैं, अभी फुर्सतगंज आया और दूसरी तरफ से न्यूज आई है उनके बूथ कैप्चरिंग की, राहुल गांधी को जवाब देना पड़ेगा।
वही अमेठी में ही कुछ लोगों ने मतदान कर्मियों पर किसी खास पार्टी को वोट देने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया।
नहीं, हम का बताएं फोटो आ रहा कमल
अरे वो तो जो वोट पर्ची निकली हुए
इस चरण के चुनाव में गृह मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। साल 2014 के चुनाव में इनमें से रायबरेली और अमेठी को छोड़कर बाकी 12 सीटें बीजेपी ने जीती थीं। लेकिन इस बार बीजेपी के अलावा सपा बसपा गठबंधन और कांग्रेस की त्रिकोणात्मक लड़ाई देखी जा रही है। अमेठी और रायबरेली में सपा और बसपा ने कांग्रेस के पक्ष में उम्मीदवार नहीं खड़े किए हैं। अमेठी में कांग्रेस और बीजेपी उम्मीदवारों में इतनी तल्खी भले ही दिखाई पड़ी हो, लेकिन लखनऊ में गृहमंत्री राजनाथ सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ रहे कांग्रेस उम्मीदवार आचार्य प्रमोद कृष्णन ने बीबीसी से बातचीत में उनकी कुछ इस तरह से तारीफ की।
राजनाथ जी अच्छे नेता हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन पार्टी बड़ी खराब है। ये पार्टी वो पार्टी है जो देश को तोड़ना चाहती है, हिंदू मुस्लिम में बांटना चाहती है, तो जो पार्टी के गुनाह हैं उनकी सजा राजनाथ जी भी भोगेंगे।
कुछ जगहों से ग्रामीण मतदाताओं द्वारा चुनाव के बहिष्कार की भी खबरें हैं। पांचवें चरण में बाराबंकी, धौरहरा, सीतापुर, गोंडा, बहराइच, मोहनलालगंज और बांदा में भी मतदान हुआ। वहीं लखनऊ में जब कुछ लोगों से चुनावी मुद्दों पर चर्चा की तो उनका जवाब बड़ा दिलचस्प था।
बेरोजगार और परेशानी, यही सब मुद्दे, वही 5 साल वाले मुद्दे सब चल रहे हैं।
वही मतलब मुद्दे दूर नहीं होने हैं।
नहीं नहीं, मुद्दे वही चलते, वही
वही मुद्दे। समीर आत्मज मिश्र, बीबीसी लखनऊ।
राजस्थान में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं, जिनमें से 13 सीटों पर पिछले चरण में वोटिंग हुई थी और बाकी 12 सीटों पर आज वोट डाले गए हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में राजस्थान में सभी 25 सीटों पर बीजेपी ने परचम लहराया था, लेकिन इस बार क्या होगा पता चलेगा 23 मई को जब नतीजे आएंगे। राजस्थान में आज हुए मतदान का ब्यौरा दे रहे हैं जयपुर से हमारे सहयोगी नारायण बारेठ।
मैंने ये सोच डाला है कि कोई मतलब ऐसी गवर्नमेंट आनी चाहिए जो किसी जाति को वो नहीं करे, सबके लिए इक्वल हो, जनरल एसटी ओबीसी सबके लिए इक्वल हो।
जो मन में जो सोच के डाल दिए, जिसको देना था जो डालिया है,
यही सोच के वो डाला है कि मोदी जी कुछ अच्छा काम करेगा।
वोट तो सही डल रहा है, ऐसी बात नहीं है। वैसे तो अब आ गया अल्लाह की मर्जी भाई, जिसका नसीब हो वही हो।
लड़कियों के लिए सुविधा होनी चाहिए, पढ़ाई लिखाई का जो गरीब लोग पढ़ा नहीं सकते उनके लिए सहायता होनी चाहिए, लड़कियों को आगे पढ़ाए। हम तो इसीलिए वोट डाल दे भाई, हमारी आशा पूरी हो। अब ये तो उनके ऊपर है करने के ऊपर, वे करते हैं कि नहीं करते हैं। जब मोदी ने यह खेया था भाई कि 1500 रुपया खत्म डालूंगी, एक दिन नहीं डाला।
15 लाख है,
1500 रुपया की खेया।
सरकार चाहे किसी की भी आए, चाहे बीजेपी हो चाहे को, पर बस बेरोजगारी मिटे सबसे ज्यादा ये है। अस्पताल में सुविधाएं बढ़ाएं,
वो मोदी बनाएंगे पीएम तो यार, और तो बेकार है।
किसी के जेहन में राष्ट्रवाद मुद्दा था तो कोई रोजगार के मुद्दे को लेकर वोट डालने पहुंचा। गर्मी की तपिश के बावजूद लोग घरों से निकले और मतदान किया, लेकिन दोपहर में मतदान की रफ्तार धीमी हो गई थी। राज्य की इन 12 सीटों के लिए शाम 6 बजे तक 62% से ज्यादा का मतदान दर्ज किया गया। राज्य के सीमावर्ती श्रीगंगानगर जिले में सबसे ज्यादा मतदान किया गया, जबकि करौली धौलपुर में मतदान का प्रतिशत कम रहा। इन चुनावों में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल बीकानेर से और राज्यवर्धन सिंह जयपुर ग्रामीण से प्रत्याशी है। जयपुर ग्रामीण में कांग्रेस ने ओलंपियन खिलाड़ी कृष्णा पूनिया को मैदान में उतारा है। केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी को यकीन है कि इन सभी सीटों पर उसकी जीत होगी। बीजेपी के प्रवक्ता पंकज मीणा कहते हैं,
देश का युवा वर्ग, देश का किसान वर्ग और देश का गरीब वर्ग आज पूरी तरह से इस बात के लिए कमिटेड है कि पुनः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री के पद पे आसीन हो।
लड़ाई बहुत कांटे की थी। बीजेपी और कांग्रेस ने कोई 500 सभा रैलियां की है। इनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने 13 रैलियों को संबोधित किया। राजनीति को लगा कि उसके प्रयास छोटे पड़ रहे हैं तो सिनेमा के कुछ सितारों को भी प्रचार में उतारा गया। कांग्रेस का दावा है कि उसे इन चुनाव में वैसी ही कामयाबी मिलेगी जैसी विधानसभा चुनाव में मिली थी। कांग्रेस महासचिव अविनाश पांडे ने बीबीसी से कहा,
मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जिस प्रकार से राजस्थान में लोगों में उत्साह है और कार्यकर्ताओं में एकजुटता है, इसको अगर हम गौर करें तो निश्चित रूप से राजस्थान में हम मिशन 25 लेकर निकले थे और मुझे पूरी आशा और उम्मीद है कि हम 25 से 25 सीटों में बहुत अच्छा मुकाबला कर रहे हैं और लोगों का विश्वास हमको मिलेगा, इसमें कोई दोमत। देश की जनता आज जानना चाहती है माननीय मोदी जी से कि मोदी जी 2014 में देश की जनता ने आपको भारी बहुमत से चुनकर दिया, आपने देश की जनता से 15 लाख उनके अकाउंट में जमा कराने का वादा किया था, उसका क्या हुआ?
दिल्ली की सत्ता के लिए ये दो प्रबल दावेदार हैं। ये चुनावी जंग है, किसी को जीत मिलेगी तो किसी को हार, मगर विश्लेषक कहते हैं कि कोई भी जीते, सियासत ने इन चुनावों में भाषा की मर्यादा को पराजित कर दिया। नारायण बारेठ, बीबीसी जयपुर।
और अब बात मध्य प्रदेश की, जहां आज लोकसभा की 7 सीटों पर वोट डाले गए। ये सीटें हैं टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा, होशंगाबाद और बैतूल। खजुराहो में मौजूद थे बीबीसी संवाददाता सलमान रावी, जहां उन्होंने वोट डालने आई कुछ महिलाओं के मन की बात जानना चाहिए।
जैसा कि आपको पता है खजुराहो अपनी कलाकृतियों के लिए जाना जाता है और ये एक टूरिस्ट स्थल है, यानी कि पर्यटक आते हैं देश विदेश से यहाँ पर। जो यहाँ की स्थानीय महिलाएं हैं उनकी अपनी अपनी समस्याएं हैं जिसको लेकर आज ये पोलिंग बूथ पर यहाँ जमा है। क्या कह रही थी आपके?
आप जो कह रहे हैं, हमें न सिलेंडर मिला है, न वो पैसा मिले मकान के नब्बे मिला है, न शौचालय के मिले हैं, और हमारे खेत में आगे छुप गई तो वो भी कुछ नहीं मिला है। गेहूँ लगे में
किलान बनाई गई है तो मिल तो चाहिए हमको, गरीब लोग हैं बहुत ज़्यादा तो मिले चाहिए हमको। डाला दो दो बार भी फालम डाला है, नहीं मिला है, और बोले के मिलेगा मिलेगा नहीं मिला है। तो सिलेंडर भी आप सबके लिए मिला तो हमको क्यों ना मिला है।
तो ये बताइए कि सब कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई स्थानीय मुद्दे नहीं है, सब दूसरे मुद्दे हैं जिस पर चुनाव लड़ा गया, लोकल नेता यहाँ के लोकल बातों पर चुनाव नहीं लड़ते हैं, सही बात है क्या ये?
सही बात तो हम कह ही रहे हैं, हमें तो जो बनते हम डाल दिया है, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला, जिसको मिला हो सो मिला, हमें तो कुछ नहीं मिला है।
लेकिन हर बार वोट डालने आती हैं तो लोग नेता वादा तो करते ही होंगे आपसे?
वादा करते तो को अबे हाँ हाँ कह देते हैं, हाँ नल खुलवा दे हैं हमारे यहाँ, ना लेटरिन है ना बाथरूम कुछ नहीं है, तो आप परेशान हैं, रोड डरवा दे हैं, खम्मा में लाइट तक नहीं है कि द्वारे में लाइट आइट हो,
महंगाई
मकान के लिए हमें नहीं पैसे मिले हैं, हमने फार्म वार्म डाला नहीं आया।
हमारा तो डोकर डोकरिया भरे हैं, कच्चे सतना कोठा लिया हुआ नहीं है लोग।
ये कह रहे हैं कि बूढ़े लोग हैं घर में और कुछ भी नहीं मिला है,
डोकर डोकरिया भरे हैं कुछ नहीं मिलाते
हैं। नेता लोग वादा करते हैं आके आपसे
ये खाना का
कोई नहीं करता, कोई नहीं करता,
मतलब बोलते हैं कि करा देंगे ठीक करा देंगे,
मनोकाय तो रहते हैं कि हम करा देंगे, लेकिन कोई नहीं करा देता है, न कोई देता है। आज तो सबको कह देना है कि देना है देना है, और कर नहीं देना है किसी का नहीं।
तो सुना आपने कि खजुराहो की महिलाएं जो हैं उनका अपना कहना है, अपनी अलग बात है, वो यहाँ पर वोट डालने जरूर आई हैं, लेकिन मन के अंदर बहुत सारी इनकी शिकायतें हैं जिसको लेकर वो यहाँ मतदान केंद्र पर आई हैं। सलमान रावी, BBC खजुराहो।
उधर पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटों के लिए सियासी घमासान जारी है। आज 7 सीटों पर वोटिंग हुई जहां बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। झारग्राम की चुनावी रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा,
हमारे कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ, उम्मीदवारों पर हमला हुआ, लेकिन वोट के लुटेरों को बंगाल की जनता द्वारा पूरा जवाब दिया जा रहा है। दीदी के गुंडों की तमाम कोशिशों के बावजूद मतदाता वोट दे रहे हैं, चुपे चाप कमल छाप, चुपे चाप कमल छाप।
ये थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने इन आरोपों को गलत बताया है। मैंने आपसे कुछ देर पहले पश्चिम बंगाल में वरिष्ठ पत्रकार PM तिवारी से बात की और जानना चाहा कि राज्य में चुनाव के दौरान आज कहां कहां किस तरह की हिंसा हुई है।
ये आज जो झड़पें हुई हैं पश्चिम बंगाल में, 7 सीटों पर मतदान था, लेकिन झड़पें हुई है मुख्यतः बैरकपुर, बनगांव, हुगली और हावड़ा में। इनमें भी बैरकपुर में सबसे ज्यादा हुई है। वहां अर्जुन सिंह बीजेपी के उम्मीदवार हैं, पहले 4 बार वो TMC के विधायक रहे हैं, तो वे एक मतदान केंद्र में जब घुसने का प्रयास कर रहे थे तो केंद्रीय बलों के साथ उनकी धक्का मुक्की हुई। उसके बाद तृणमूल कांग्रेस समर्थकों के साथ भी उनकी झड़प हुई। इसमें उनका दावा है कि चोट लगी है और घायल हो गए हैं, और यहाँ से पूर्व रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी मैदान में है। इसके अलावा बनगांव में भी एक ऐसी बम फटा जिसमें 2 पुलिस वाले घायल हो गए, और कुछ जगह EVM की गड़बड़ी के चलते काफी मतदान देरी से शुरू हुआ। इससे नाराज वोटरों ने वहां नारेबाजी की और अपनी नाराजगी जताई। हावड़ा में भी 2-3 जगहों पे प्रदर्शन और तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी समर्थकों के बीच झड़पों की खबर मिली है। इसी तरह हुगली जिले में भी बीजेपी की उम्मीदवार है लॉकेट चटर्जी, उनको देखा गया कि एक चुनाव अधिकारी को धमका रही है। यहाँ उनका मुकाबला 2 बार कांग्रेस सांसद रही रत्ना दे से है। और हावड़ा में जो तृणमूल उम्मीदवार हैं प्रसून बनर्जी, उन्होंने भी आरोप लगाया कि केंद्रीय बल के जवानों ने उनके साथ धक्का मुक्की की। इस मामले में उन्होंने पुलिस में FIR भी दर्ज कराई है।
बाकी राज्यों के मुकाबले हम देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल से हिंसा की खबरें ज्यादा आ रही हैं, चुनावी हिंसा की खबरें, मतदान वाले दिन खासतौर पर। क्या वजह है कि पश्चिम बंगाल में वोटिंग के दौरान झड़पें, हिंसा, झड़प ये ज्यादा होती हैं?
बंगाल में कह सकते हैं कि एक चुनावी संस्कृति है। बंगाल में आजादी के बाद से ही मतदान कभी शांतिपूर्ण नहीं होते हैं और हमेशा जिसकी लाठी उसकी भैंस की तर्ज पर हिंसा होती रही है। और ये शहरों में नहीं होती है, खासकर सबर्ब इलाके जो हैं और ग्रामीण इलाके हैं वहां हिंसा होती है, क्योंकि बंगाल में ग्रामीण इलाकों के वोट ही निर्णायक हैं। जब पहले कांग्रेस की सरकार थी सिद्धार्थ शंकर की, तो सीपीएम और कांग्रेस में झड़पें होती थी, उसके बाद सीपीएम आई तो कांग्रेस बनाम सीपीएम, फिर ममता बनर्जी ने जब अपनी पार्टी बनाई तो लेफ्ट बनाम तृणमूल कांग्रेस के बीच झड़प होती रही है। और पहले के चुनाव आप देखें तो उनके मुकाबले यह चुनाव जो चल रहा है इसको शांतिपूर्ण ही कहा जा सकता है, क्योंकि अब तक दो लोग ही मारे गए हैं, जबकि पिछले साल पंचायत चुनाव जो हुए थे उनमें 50 से ज्यादा लोग मारे गए थे हिंसा में। तो ये बंगाल की परंपरा बन गई है, जब भी दो दलों के बीच वर्चस्व की लड़ाई होती है तो ये हिंसा होती है यहाँ चुनाव में, चाहे वो पंचायत चुनाव हो, विधानसभा के हो या लोकसभा के।
ये थे हावड़ा से वरिष्ठ पत्रकार पीएम तिवारी। आज बिहार में सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण और हाजीपुर में भी मतदान हुआ। कैसा रहा मतदान बता रही हैं पटना से हमारी सहयोगी सीटू तिवारी।
देखिए, कुल 5 जगह मतदान हुआ जैसा कि आपने भी बताया, और जो वोटिंग ट्रेंड था वो ये था कि सुबह 7 बजे से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली, लेकिन ये कतारें जो है वो 11 बजे के बाद बहुत कम हो गई क्योंकि गर्मी बेहद ज्यादा थी, और शाम 4 बजे से फिर वो कतारें देखने को मिल रही हैं। इस बाद भी लोग वोट करते रहेंगे। अगर हम घटनाओं की बात करें तो कुछ जगह ईवीएम खराब थी, उसको बाद में बदला गया। इसके अलावा 2-3 महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। एक तो हाजीपुर में पुलिस ने लाठीचार्ज किया, फर्जी वोटिंग का शक था पुलिस को। इसके अलावा मुजफ्फरपुर में एक होटल में 6 ईवीएम और वीवीपैट जो है वो बरामद हुई है, जिसके लिए जो सीईओ है बिहार के, उन्होंने एचआर श्रीनिवासा, उन्होंने जांच का आदेश दिया है। इसके अलावा सारण में एक घटना ये घटी है कि नया गांव में एक रंजीत पासवान नाम के एक आदमी ने ईवीएम तोड़ दी। इसके अलावा एक और मुजफ्फरपुर में जो एक वीडियो स्थानीय मीडिया में दिखाया जा रहा है वो ये है कि मतदान केंद्रों के आसपास प्रधानमंत्री मोदी की या बीजेपी की जो है वोट मांगते हुए या अपने पक्ष में प्रचार करते हुए कई तस्वीरें जो है वो लगी हुई हैं, जिसको बाद में जब ये तस्वीरें मीडिया में आई आज, जिसको बाद में उसको मिटाते हुए चुनाव आयोग के अधिकारी दिख रहे हैं। तो बिहार में जो पूरा वोटिंग है वो शांतिपूर्ण रहा इन इक्की दुखी घटनाओं को छोड़। देखिए, एक जो सबसे सीट महत्वपूर्ण सीट है वो सारण सीट है, जिस पे सबकी नजर है, उस पे चंद्रिका राय जो कि लालू प्रसाद यादव के समधी है और राजीव प्रताप रूड़ी जो कि बीजेपी के नेता है उनके बीच में मुकाबला था। और साथ ही हाजीपुर की सीट है, हाजीपुर में रामविलास पासवान सभी जानते हैं, उन्होंने पासवान कर दी है अपने भाई पशुपति कुमार पारस को, जिनका मुकाबला शिवचंद्र राम है। इसके अलावा मधुबनी सीट जो है वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि वहां पे मुकाबला शकील अहमद के चलते त्रिकोणीय हो गया है। सीतामढ़ी से सुनील कुमार पिंटू और अर्जुन राय लड़ रहे हैं जो कि मंत्री भी रहे हैं। और मुजफ्फरपुर में चूंकि बहुत मैसिव कैंपेनिंग हुई है, अजय निषाद को अपनी सीट बचानी है, लेकिन उनको बहुत कड़ा मुकाबला जो है वो विकासशील इंसान पार्टी के राजभूषण चौधरी दे रहे हैं। और यहाँ पर ये माना जा रहा है कि जो अति पिछड़ी जाति के वोटों को जो अपने पक्ष में कर लेगा उसी की जीत होगी।
ये थी पटना से सीटू तिवारी। और अब बात जम्मू कश्मीर की, जहां अनंतनाग और लद्दाख लोकसभा सीटों के लिए आज मतदान हुआ। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ श्रीनगर से बीबीसी संवाददाता रियाज मसरूर।
लद्दाख के लेह और करगिल जिलों में आज सवेरे 7 बजे से ही वोटरों की लंबी कतारें मतदान केंद्रों पर थीं, परंतु पुलवामा और शोपियान में पिछले 4 दिन के दौरान हिंसक घटनाओं, लगातार गिरफ्तारियों और सैन्य ऑपरेशनों में चरमपंथियों की मृत्यु के बाद जबरदस्त तनाव पाया जाता है। तनाव के कारण पुलवामा और शोपियान जिलों में वोटिंग 4 बजे तक ही सीमित कर दी गई, परंतु लद्दाख में शाम 6 बजे तक वोटिंग जारी रही। 4 बजे से पहले शोपियान और पुलवामा में कुल मिलाकर 4% से भी कम वोटिंग रिकॉर्ड की गई, परंतु लद्दाख में 50% से ज्यादा वोट पड़े। गौरतलब है ये पहला मौका है कि पार्लियामेंट के चुनाव के दौरान बीजेपी ने भी कश्मीर की 3 सीटों के लिए प्रत्याशियों को खड़ा किया था। दक्षिणी कश्मीर की सीट के लिए चुनाव लड़ रहे 18 प्रत्याशियों में पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हसनैन मसूदी, कांग्रेस के जीए मीर और बीजेपी के सोफी यूसुफ मुख्य प्रतियोगी हैं। अनंतनाग की पार्लियामेंट सीट के लिए 3 चरणों में वोटिंग हुई। तीसरे और आखिरी चरण के तहत आज शोपियान और पुलवामा के अति संवेदनशील जिलों में वोटिंग हुई। हालांकि दोनों जिलों में अक्सर मतदान केंद्रों पर सन्नाटा छाया रहा। बीजेपी के प्रत्याशी और वरिष्ठ नेता सोफी यूसुफ ने दावा किया कि लोग इनकी पार्टी को वोट दे रहे हैं,
वोट पड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को ही वोट पड़ रहे हैं। 10-15 पोलिंग स्टेशनों पे मैं गया हूं, वहां वोट पड़ रहे हैं। एका दुका वोट कहीं पे 20 पड़े, कहीं पे 30 पड़े, कहीं पे 40 पड़े, बट वोट पड़ रहे हैं।
पीडीपी के लीडर वहीद परा का कहना है कि कश्मीर में अगर चुनावी राजनीति को लोकप्रिय बनाना है तो भारत सरकार को क्षेत्रीय दलों के लिए राजनीतिक वातावरण अनुकूल बनाना होगा। वहीद ने कहा कि चुनाव ही सभी समस्याओं का समाधान है। गौरतलब है कि 2 अप्रैल के दिन पुलवामा के इमाम साहब इलाके में गुमसान की झड़प के दौरान 3 चरमपंथी मारे गए थे, जिसके बाद इलाके में प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू हो गया। आज भी कुछ इलाकों में लोगों ने मतदान केंद्रों के बाहर विरोध प्रदर्शन किए। पुलिस का कहना है कि चरमपंथियों ने एक मतदान केंद्र पर ग्रेनेड फेंका जो जोरदार धमाके से फट गया, परंतु इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रियाज मसरूर, BBC, श्रीनगर।
दिन भर में अब बारी है श्रोताओं की, आपकी चिट्ठियों की।
आपकी राय स्वीकार कीजिए। मेरा नमस्कार, मैं वंदना, और आज मेरे साथ स्टूडियो में हैं
सुशीला सिंह। बहुत दिनों के बाद वंदना
जी, आज चिट्ठियां भी हैं और ईमेल भी हैं, तो श्रोताओं की बात जो उनके दिल की बात है आज वो पहुंचाइए हमारे तक। सुशीला, पहला किसका ईमेल या चिट्ठी लेकर आई हैं?
ये ईमेल है रफीक इब्राहिम परकर का, जो लिखते हैं कि आज सुबह नमस्कार भारत में वसतुल्ला खान की रमज़ान के चांद के बारे में डायरी वाकई में बहुत सराहनीय थी। साथ ही लिखते हैं कि शुक्रवार को मधुलिमई पर रेहान फजल की विवेचना भी इन्हें बहुत पसंद आई।
रफीक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। एक तरह से इन्होंने मेरे दिल की बात कह दी। मैं भी आज सुबह थोड़ी थोड़ी अलसाई थी और मैंने जो कार्यक्रम सुनना शुरू किया तो जब इनकी डायरी आई तो एकदम से मैं भी जग गई। कब वो तंज कस जाते हैं कई बार पता भी नहीं चलता, तो बहुत लोगों को पसंद आता है और हम आपकी जो बात है उन तक पहुंचाते भी रहते हैं, और इसी तरह विवेचना की बात भी हम रेहान जी तक एक बार फिर पहुंचा देंगे।
एक और ऑनलाइन चिट्ठी है हमारे पास गौतम दत्ता किशनगंज बिहार से। ये लिखते हैं कि साप्ताहिक खेल समाचार में हमेशा की तरह आदेश कुमार गुप्त छाए रहे। अंतर्राष्ट्रीय मंच द्वारा ये प्रशंसा किया जाना चाहिए कि फणी चक्रवात का भारत ने बहुत ही कुशलता से मुकाबला किया। ये खबर BBC पर सुना जाना सच में अपना सीना 56 इंच का हो गया।
जी, तो गौतम जी बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो आपने वक्त निकाला और अपनी बात साझा की, और आदेश जी का वाकई अंदाज बहुत अच्छा रहता है। आजकल तो IPL की वो ताज़ा तरीन खबरें लेकर आते हैं। और रही बात जो ओडिशा में जो तूफान आया, तो भारत में ही नहीं भारत के बाहर भी इस बात की प्रशंसा हो रही है कि जिस तरह का ये तूफान था उसकी जो तैयारी थी वो बहुत बेहतरीन तरीके से की गई थी।
एक अगला ईमेल जो मेरे पास है वो है मंगलाराम बिश्नोई का, और ये BBC से नाराज़ हैं। ये लिखते हैं कि 5 अप्रैल को नमस्कार भारत में गौतम गंभीर से किए गए इंटरव्यू का प्रसारण BBC की स्थापित प्रतिष्ठा के प्रतिकूल है। ये लिखते हैं कि इस इंटरव्यू में व्यक्ति, विषय और प्रसंग महत्वहीन है। देश के चुनावी माहौल में ये अगंभीर विषय है जिसे प्रयोजना पूर्वक गंभीर बनाने के लिए BBC दोषी है।
जाहिर तौर पे ये नाराज हैं, बहुत खुश नहीं हैं कि गौतम गंभीर से बातचीत हुई, लेकिन ये चुनावी मौसम है, जो राजनीति में हर तरह के लोग आके अपना हिस्सेदारी दे रहे हैं। कई फिल्म अभिनेता हैं जिन्होंने चुनाव लड़ा है। गौतम गंभीर एक उम्मीदवार हैं और इसी नाते BBC ने उनसे इंटरव्यू किया था। ऐसे कई लोग हैं जो राजनीति से बाहर से आते हैं लेकिन वो कदम रखते हैं, तो BBC की जिम्मेदारी रहती है कि उनकी सोच वो श्रोताओं तक पहुंचे जाए, तो इसी नाते गंभीर से भी बातचीत हुई।
ये कमलेश पाटीदार हैं वंदना, ये गट्टूलाल पाटीदार शिवराजपुर राजस्थान से लिख रहे हैं, और ये कहते हैं कि मैं 1986 से प्रसारण सुनता आ रहा हूँ। कश्मीर मामलों पर माजिद जहांगीर की रिपोर्ट अच्छी लगी। 3 दशकों बाद पुनः कश्मीरी पंडितों की कश्मीर वापसी आत्मविश्वास भरी खबर लगी। इस रिपोर्ट के लिए जहांगीर भाई को धन्यवाद पहुंचाना चाहता हूं।
जी बिल्कुल, एक अनोखी घटना थी, काफी इस पे कवरेज हुई, BBC ने भी इस पे काम किया। माजिद जहांगीर वहां गई, आपकी बात उन तक जरूर पहुंचाई जाएगी। तो सुशीला, समय बहुत नहीं है आज,
लेकिन मेरे हाथ में चिट्ठियां
बहुत हैं, शायद अगली बार से ही। बस जाते जाते ये जरूर कहूंगी कि हमारी महिला श्रोता भी चिट्ठी लिखा करे तो और भी अच्छा लगेगा। तो जाते जाते एक बार पता बता दें, पोस्ट बॉक्स 3035 नई दिल्ली 110003, और अगर ईमेल करना चाहें तो hindi.letters@bbc.co.uk।
नमस्कार।
चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर सुनते हैं भूमिका राय से।
BBC समाचार। सोमवार को लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के तहत 7 राज्यों की 51 सीटों पर मतदान हुआ। चुनाव आयोग के मुताबिक शाम 6 बजे मतदान का कुल 61.89% मतदान हुआ। सुप्रीम कोर्ट की आंतरिक समिति ने चीफ जस्टिस रंजन गोगोई पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों को निराधार पाया है। सीबीएसई के 10वीं के परिणाम घोषित हो गए हैं। संभवतः ऐसा पहली बार हुआ है जब 13 विद्यार्थियों ने एक साथ टॉप किया है। इन सभी 13 विद्यार्थियों को 500 में से 499 अंक प्राप्त हुए हैं। आज महिलाओं का पहला आईपीएल मुकाबला जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में सुपरनोवा और ट्रेल ब्लेजर के बीच खेला जा रहा है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे शाकिर आलम। अगला प्रसारण नमस्कार भारत भारतीय समय अनुसार सुबह 6:30 बजे। फिलहाल संदीप सोनी के साथ समस्त सहयोगियों को दीजिए इजाजत। शुभ रात्रि।